मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 9 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को सामान्यतया मैं कुछ सूचनाएं आप सबको देता हूं और वे सूचनाएं लगभग आप सब में से बहुतों को मालूम भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे देनी होती हैं क्योंकि नए नए जो श्रोता हैं इससे जुड़ते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स सूचनाएं ये हैं कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन सैटरडे को यानी कि कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि आपको आज मिल रही हैं। साथ ही सैटरडे को आपको हम लोग कुछ वजन कह लीजिए, बोझ कह लीजिए, या होमवर्क कह लीजिए, या एक्स्ट्रा वर्क कह लीजिए प्रोवाइड करते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल्स दिए जाते हैं। 2 आर्टिकल्स योजना के होते हैं और 2 कुरुक्षेत्र के होते हैं। इनमें से टोटल 2 इंग्लिश के होते हैं और 2 हिंदी के होते हैं। मित्रों व्यक्तिगत तौर पर अभी जैसे स्टूडेंट जब यहां क्लास में आए हुए थे तो वे लगातार मुझसे एक प्रश्न कर रहे थे कि सर आप जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स देते हैं क्या उतने ही हमारे लिए पर्याप्त हैं या हमें योजना और कुरुक्षेत्र के सभी आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। फ्रेंड सच पूछे तो इसका सीधे सीधे उत्तर दे पाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखिए मंथली मैगजीन है तो योजना के हम आपको 4 आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देते हैं हिंदी के और 4 आर्टिकल्स इंग्लिश के। जरूरी नहीं है कि हिंदी का इंग्लिश वर्जन हो या इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि 4 आर्टिकल्स में आपको 5 या 6 टॉपिक पढ़ने को मिल जाए, और जो आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेटली वो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको दिए जाते हैं। यही स्थिति कुरुक्षेत्र की भी होती है। इसलिए यदि आप पढ़ सकते हैं, समय स्पेयर कर सकते हैं, तो जो दूसरे आर्टिकल्स बच जाते हैं जो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, चाहे तो आप एक सरसरी निगाह उस पर मार लें, लेकिन यदि किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या मैगजीन आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मान करके चलिए कि योजना और कुरुक्षेत्र का जो इस्तेमाल आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए था वह आप कर रहे हैं। इतनी बात तो मैं कम से कम आपसे कह ही सकता हूं। फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है। स्टूडेंट इस पर भी प्रश्न कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि शायद मुझे और इस बात को क्लियर करना चाहिए। देखिए वीकली क्वेश्चन बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन इस प्रैक्टिस का लाभ आपको मिलेगा कब? केवल लिखने से ही लाभ नहीं मिलता है। इससे आपको आत्मसंतोष तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन लाभ आपको सच्चा तब मिलेगा जब आप तैयारी करके प्रैक्टिस करें। अब तैयारी 2 तरीके से हो सकती है, या तो आपकी सिविल सर्विस की तैयारी कंप्लीट हो गई है तब डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी पूरी हुई नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको चाहिए कि आप जिस टॉपिक पर आंसर लिख रहे हैं स्पेशली उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पहले से मालूम है और अच्छा है, आप उसी एंगल से पढ़िए और इसके बाद फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आप सही मायने में इसका लाभ उठा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त एक अंतिम सूचना यह होती है फ्रेंड्स कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है जो हमारे क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको भेजा जाता है वह उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों आइए अब हम आज के न्यूज पर आते हैं। न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, कोई खास न्यूज इनफैक्ट थी नहीं, और सच पूछिए तो जो दिवाली का मौसम होता है वो लगभग इसी तरह का ही थोड़ा बहुत होता है। नोटबंदी के बारे में जो मुख्य खबर थी, नोटबंदी पर आप देख रहे हैं कि लगातार अभी आर्टिकल्स आ रहे हैं, और चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक है कि जो विपक्ष है वो नोटबंदी के मामले को लेकर के, जीएसटी के मामले को लेकर के सरकार की आलोचना करेगा और सरकार अपने बचाव में अपनी बात कहेगी, तो ये तो सामान्य तौर पर होता ही है। मुझे ध्यान आ रहा है कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए हैं, वित्त मंत्री जी के स्टेटमेंट को आधार बना करके मैंने इससे पहले इस इश्यू पर बात की है। तो मित्रों उसे रिपीट करने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अभी जो वित्त मंत्री जी का जो वक्तव्य है वो लगभग लगभग उन्हीं के समानांतर है कि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा औपचारिक हुई है, ज्यादा सिस्टमैटिक हुई है, डिजिटल भुगतान बढ़ा है, कैश पेमेंट में कमी आई है, ज्यादातर लोग अब टैक्स देने लगे हैं, टैक्स कलेक्शन भी थोड़ा सा बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, ज्यादा लोग अब इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, तो इस तरह की बातें वो कहते रहे हैं। फिर देखिए जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक दो बातें कही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि इस पर भी आप सबको विचार करना चाहिए, अपने तरीके से सोचने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा वो कह रहे हैं तो किस रूप में कह रहे हैं, मतलब उनकी आप एनालिसिस कैसे कर सकेंगे। जैसे अगर वो कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, प्रधानमंत्री अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि इससे जो हमारे मध्यम और जो छोटे उद्योग थे वो चौपट हो गए तो ऐसा कैसे हुआ, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार किया ही जाना चाहिए। वो भी ये भी आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने काले धन को समाप्त करने के लिए कदम उठाया था लेकिन काला धन तो समाप्त नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा धन व्हाइट हो गया, तो इससे सरकार को क्या लाभ हुआ, समाज को क्या नुकसान हुआ, इस पर भी आप अपनी तरफ से विचार कर सकते हैं और आपको विचार करना ही चाहिए। क्योंकि इन सारे मुद्दों पर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। एक मैं आपको थोड़ी सी दूसरी एक ये कह लीजिए कि एक रिपोर्ट की सूचना देना चाहूंगा जो पर्यावरण से संबंधित है, जो साइंस जर्नल है नेचर, उसमें अभी एक रिपोर्ट छपी है, ये खासकर पर्यावरण से संबंधित है। उसमें ये रिपोर्ट है कि जो जंगल है अनटच्ड फॉरेस्ट, यानी कि अपने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में जो फॉरेस्ट हैं, इस तरह के फॉरेस्ट का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कि ऑलमोस्ट 65% दुनिया के केवल 5 देशों में है। और ये 5 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, रूस और अमेरिका, यानी कि ये जो 5 देश हैं इनमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक तौर पर वन मौजूद हैं। उस रिपोर्ट में, उस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि अब पृथ्वी का पूरी की पूरी भूमि पर केवल 23% जमीन ही ऐसी बची है जिस पर कृषि और उद्योगों का असर नहीं है, यानी कि कृषि और उद्योगों से वो बची हुई है, अनटच्ड लैंड, यानी कि वो पूरी तरह से अपने नेचुरल फॉर्म में है। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा, और भारत के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत के लगभग 23% भागों में ही वन है, जबकि सही मायने में 33% भाग पर वन होना चाहिए, तो हम 10% मतलब कम है, टोटल का 10% कम है, यानी कि जितना होना चाहिए उसका लगभग 60-70% वन ही हमारे यहां मौजूद है, तो यह भी एक चिंताजनक बात। फ्रेंड्स आइए अब हम थोड़े से दूसरे इश्यूज पर बात करते हैं, और आज के मुख्य विषय के रूप में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में अभी जो विवाद चल रहा है, इसके थोड़ी सी मूलभूत बातों को आप समझ लीजिए। जनरल स्टडीज मेंस का जो सेकेंड पेपर है उसमें आप देखिए एक शब्द दिया हुआ है पॉलिटी, हालांकि ये विषय देखिए इकोनॉमिक्स का है, आरबीआई और सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो आरबीआई तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ संस्थान है, और सरकार एक तरीके में सरकार पूरी प्रशासकीय व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका है, तो जो इश्यू है वो बेसिकली थर्ड पेपर का है। लेकिन आइए मैं थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में बात करूंगा, तभी आप इस विवाद को सही तरीके से समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ समय से यह विवाद चल रहा है, अखबारों में भी लगातार इस पर लिखा जा रहा है, मैंने भी आपको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, आज भी मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल दे रहा हूं, इसकी पॉलिटी को आप समझिए। देखिए एक तरफ रिजर्व बैंक है जो अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र इस मायने में नहीं कि सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर्स और जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करती है, और दूसरे मसलों पर भी लगातार जो वित्त मंत्रालय है और रिजर्व बैंक आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन निर्णय लेने के मामले में रिजर्व बैंक को स्वतंत्र रखा गया है। राइट, स्वतंत्र क्यों रखा गया है, स्वतंत्र इसलिए रखा गया है फ्रेंड्स कि जो रिजर्व बैंक है वो देश की अर्थव्यवस्था का आप ये कह लीजिए कि मॉनिटर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अपेक्स संस्थान है, और उसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। हमारे मार्केट में, समाज में कितनी मुद्रा प्रचलित है, कितनी होनी चाहिए, और इसी पर ही पूरे देश की महंगाई और दूसरी चीजें निर्भर करती हैं, आयात निर्यात प्रोडक्शन। मैं यूं कह लीजिए कि पूरा का पूरा हमारा जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर ये बात कहे जाने से समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अभी जो क्लास के स्टूडेंट हैं मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यही सच पूछे तो इस क्लास की उपयोगिता भी है, राइट? यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्णय लेने के मामले में रिजर्व बैंक स्वतंत्र है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है। अब सरकार के साथ क्या होता है कि सरकार एक बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मूलतः तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो सत्ता में आ गई चाहे कोई भी पार्टी हो, तो सरकार जनता से वायदा करके कुछ आती है और वो चाहती है कि वायदा करने में उसे दूसरों की भी मदद मिले, चाहे कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो। अब उसमें जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन होगा वो तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसके वायदों को पूरा करने में। चलिए वो एक बात है, अगर सरकार बहुत ज्यादा अपने वायदों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करेगी तो उसका भी हर्जाना अंततः देश को भुगतना पड़ेगा और फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो वो भी एक सीमा तक अपने को नियंत्रण में रखती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है उसकी एक है धारा 7, जो आप लगातार आर्टिकल्स में पढ़ रहे होंगे। उस धारा 7 में ये कहा गया है, यानी कि सरकार को यह परमिशन है कि वह जनहित में अगर जरूरी समझे तो समय समय पर रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। अब इसमें दे रहा है कि जनहित में जरूरी समझे तो। अब सवाल यह है कि वो जनहित को आप डिफाइन कैसे करेंगे। अभी ये जो विवाद हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे रीजन है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, लघु और मझोले उद्योगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मार्केट में उस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं रह गई हैं, तो उसको लेकर के सरकार चिंतित है और उसका चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को तो पब्लिक को जवाब देना है और अगले साल जब चुनाव होंगे तब सरकार को इन सब प्रश्नों के पब्लिक के उत्तर देने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाह रही है कि किस तरीके से इन आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाए, लोगों को सस्ती के ऋण ब्याज के दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि जो मझोले उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनमें फिर से जाना आ सके। तो वो रिजर्व बैंक पर इस तरीके से कुछ दबाव डाल रही है, या यूं कह लीजिए कि आपस में बातचीत करने के बाद उससे कह रही है। अभी दबाव जैसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तो बातचीत ही चल रही है, कोई इस तरह के निर्देश अभी तक आए नहीं है कि रिजर्व बैंक उसको मानने को बाध्य ही हो, लेकिन अभी जो तनाव का कारण है वो यही है मूलतः। अब आप इसे थोड़ा सा इन स्पष्ट शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। रिजर्व बैंक जो निर्णय लेगी वो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके लेगी, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है। इस रूप में वो ये देखती है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया जाना चाहिए, राइट? दूसरी तरफ सरकार है, सरकार एक राजनीतिक पार्टी है, डेफिनेटली अर्थव्यवस्था के लिए वो जिम्मेदार रहेगी और उसे पब्लिक को जवाब देना होगा। लेकिन खासकर चुनावी दौर में सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वह रिजर्व बैंक के किसी निर्णय से लाभ उठा करके पुनः सत्ता में आने में उसकी मदद मिल जाए तो डेफिनेटली वो इस तरीके की करने की कोशिश करती है। और ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, सही है क्या है, गलत क्या है, डेफिनेटली इसी पर विवाद चल रहा है, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, राइट? तो मित्रों इसे ही हम कहते हैं पॉलिटी, राइट? आर्टिकल मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप अपने ढंग से देख लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल उपलब्ध करा रहा हूं जो खासकर जो एस्पिरेशंस डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, जो इन्हें आप महत्वाकांक्षी जिला कहते हैं, और इस पर 2018 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप केवल इस आर्टिकल को पढ़िए, राइट? यानी कि आर्टिकल महत्वाकांक्षी जिलों के ऊपर है, और इसके बाद आप 2018 के पेपर 1 में जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट है उसका है क्वेश्चन नंबर 17, आप उसको पढ़िए, महत्वाकांक्षी जिलों पर है। और जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको सरल सा लगेगा। आर्टिकल को पढ़िए और फिर उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आपको पहली बार शायद इस बात का एहसास हो कि नहीं, जो प्रश्न इतने सरल से दिखाई दे रहे हैं वस्तुतः वे उतने सरल होते नहीं है, जिसकी बात मैंने कल आप सबसे की थी। प्लीज आप इसे करें, राइट। मैं एक आर्टिकल आपको और प्रोवाइड कर रहा हूं जो खासकर कंपनी के निदेशक मंडल के ऊपर है। यह भी बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। जो अभी क्लास में स्टूडेंट आए थे उन्हें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि निदेशक मंडल के बारे में आपको बताया जा चुका है और मुझे खुशी है कि आप सब इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप महसूस करेंगे कि यह आर्टिकल क्लास में आने से पहले आपके लिए कितना अजूबा था और अब जबकि आप क्लास करके जा चुके हैं यह आर्टिकल आपके लिए कितना आसान हो गया है और प्यारा भी हो गया है। इस लिहाज से आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त भी मैं दूसरे प्रेस क्लिपिंग्स आप सबको फ्रेंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उसे देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रिया मिश्रा को जो शहडोल मध्य प्रदेश से हैं, सूर्य प्रकाश को और सौंदर्य सिंस को जो रांची झारखंड से हैं, जो अभी क्लास में आए थे और उन्होंने मुझे सूचित किया है कि क्लास से जाने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं यानी कि अपने अंदर किस तरीके के परिवर्तन को का वो अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए सौंदर्य, सूर्य और प्रिया, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और कुछ अन्य दोस्तों के नाम हैं, ओंकार रविन्द्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र से, सुनीला मिंज और राकेश भार्गव, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक फ्रेंड का नाम जो मैंने सौंदर्य का नाम लिया था, उनका पूरा नाम है सौंदर्य सिन्हा जो रांची झारखंड से हैं, सौंदर्य तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ये दो दिन आपके बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।